हरे कृष्णा। तो रामनवमी के श्री राम जन्मोत्सव के इस संध्या जागृति कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि प्रभु के कथा सुनने से क्या क्या लाभ होते हैं। प्रभु के भक्ति में हमारे जो कर्म होते हैं ना, वो बहुत बाधा डालते हैं। जब तक हमारे मन में भौतिक दुनिया को भोगने की इच्छा रहती है और उसके अनुसार हम कर्म करते हैं और उस कर्म का बोझ रहता है, जब तक हम भगवान के लिए कर्म नहीं करते हैं, हर कर्म का बोझ रहता है, क्योंकि उसका फल प्राप्त होता है, फल को भोगना पड़ता है, उसको कर्म फल कहते हैं। तो भौतिक इच्छा और उसके ऊपर आधारित जो कर्म करते हैं, वो सभी हमारे ऊपर एक बोझ होता है, और उस बोझ के कारण जीव जो है भगवान की भक्ति में सहज प्रगति नहीं कर सकता है। तो सबसे पहला लाभ यह है भगवान की कथा सुनने का, कि भौतिक इच्छाओं का बोझ कम हो जाता है अपने आप ही। केवल कथा श्रवण करने से भौतिक इच्छा, भगवान को भूल कर की हुई इच्छा जो है, उसका बोझ कम होने लगता है। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धोरे। कृष्ण को, राम को भूल कर जो हम कर्म करते हैं खुद के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए, वो सारे कर्म और उस कर्म करने की इच्छा जो है, वो भगवान की कथा सुनने से धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। दूसरा लाभ, जैसे ही भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, रुचि उत्पन्न होती है। शुश्रुषो श्रद्धाधानस्य वासुदेव कथा रुचि। श्रद्धा के साथ जो भगवान की कथा श्रवण करता है, मतलब क्या हुआ, जगते हुए, सोते हुए नहीं, झपके लेते हुए नहीं, अलर्ट। जब श्रद्धा के साथ भगवान की कथा कोई सुनता है तो उसके मन में भगवान की कथा के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, और ऐसा आकर्षण है जो मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारा मन अभी सभी जगह पर आकर्षित हो चुका है एक भगवान को छोड़कर, और जहां जहां आकर्षित हो चुका है वो हमको डुबाने वाला है, जन्म मृत्यु के सागर में बार बार डुबाने वाला है। इसलिए भौतिक जीवन में भगवत कथा बहुत आवश्यक है। हरि कथा, राम कथा, सब भगवान के अवतारों की कथा सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए ये जागृति कार्यक्रम किया है, केवल आप सब लोगों को भगवान के अलग अलग अवतारों की कथा विस्तार में सुनने के मिले, और भगवान की कथा सुनने से भाग्य का उदय होता है। भाग्य का मतलब क्या, जहाँ भगवान का आकर्षण है वही भाग्य है, जहाँ भगवान का आकर्षण नहीं है लेकिन बहुत पैसा है, बहुत प्रसिद्धि है, बहुत सुंदरता है, बहुत विद्या है, वो वरदान नहीं है, वो दुर्भाग्य का लक्षण है। क्योंकि ये विद्या, धन, सुंदरता भगवान के बगैर हो गई होती है तो सब जीरो होते हैं, और आपके पास अगर 1000 जीरो है तो उसका वैल्यू कितना होता है, जीरो। लेकिन आपने 1000 जीरो लाइन से लगा दिए और उसके सामने 1 लगा दिया तो क्या होता है, हर एक जीरो का वैल्यू 10 गुना बढ़ जाता है। 1 के सामने 2 जीरो लगाए तो 100 हो जाता है, तीसरा लगाया तो 1000 हो जाता है, चौथा लगाया 10000, पांचवा लगाया 100000। तो हमारे सारे जो जितने हमारे गुण हैं, जितने हमारे डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, वो सब जीरो हैं, उसके सामने भगवान का 1 लगाना चाहिए। तो हमारी सारी डिग्री, हमारा धन दौलत, हमारी सुंदरता, हमारी विद्वत्ता, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा यश कीर्ति, सब वैल्यूएबल हो जाता है। इसलिए अगर हमारे जीवन को वैल्यू देना है तो उसके सामने भगवान का 1 रखना चाहिए। जब वो रखेंगे तो हमारा सारा जीवन जो है वो बहुत कीमतवान, कीमत मूल्यवान बन जाएगा। और विशेष करके ये जो तिथियां हैं ना, इसको माधव तिथि कहते हैं, मतलब एकादशी है, महीने में 2 बार आती है, राम जन्म दिवस है, हनुमान जयंती है, जगन्नाथ रथ यात्रा है, हाँ कृष्ण जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, नरसिंह जयंती है, दीपावली है, दशहरा है, ऐसे हम गिनते सकते हैं, और साल भर में बहुत सारे आते हैं ऐसे। इसको माधव तिथि कहते हैं। माधव तिथि को भगवान की बड़ी विशेष कृपा होती है, इसलिए माधव तिथि के दिन सब लोग उपवास करते हैं। जैसे आज हमने दोपहर तक उपवास किया, जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे तक उपवास करते हैं, गौर पूर्णिमा को शाम को सूर्यास्त चंद्रोदय तक उपवास करते हैं, और उपवास करने के बाद हरि कथा सुनते हैं, हरि नाम का रोज से अधिक जप करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान का अभिषेक देखते हैं या करते हैं या उसमें दान देते हैं, वहाँ पर जाके कथा सुनते हैं, प्रसाद पाते हैं भगवान का। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि इस दिन जो अधिक कृपा आपके लिए उपलब्ध है वो पूरी तरह से आपको प्राप्त हो जाए। एक एक तिथि के माध्यम से कई हजारों कर्म नष्ट हो जाते हैं, कई लाखों कर्म भगवान की दया से नष्ट होकर हमारे हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। तो ये है हरि कथा। हाँ, हरि कथा, राम कथा, रामलीला अनंत है, उसका लाभ भी अनंत है, लेकिन उसको शुश्रुषो श्रद्धाधानस्य, श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। अगर आप कहते हैं कौन राम है, कौन कृष्ण है, ये कौन है, सब ये बकवास है सब कुछ, ऐसी भावना से आप सुनेंगे तो आपका मनोरंजन भी नहीं होगा, ध्यान रखना। क्योंकि तो मनोरंजन भी होता है भगवान की कथा में सुनने के बाद, मनोरंजन, आत्मरंजन, बुद्धिरंजन, हाँ सब होता है, केवल नींद नहीं आना चाहिए बस। नींद आएगा तो गड़बड़। इसलिए ये सब पहले क्यों बताया आपको मैं, क्योंकि मैं अभी राम की, भगवान प्रभु रामचंद्र की कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो जिस किसी को अगर कोई कष्ट है तुरंत खड़े हो जाओ, लेकिन कथा में सो मत, क्योंकि जो भाग्य आपको प्राप्त होने वाला है वो अपने हाथ से आप नष्ट करने वाले हो अगर सो जाते हो। इसलिए कथा करने वाले का ये कर्तव्य होता है समझाने के लिए कि क्या दिया जा रहा है, उसका लाभ क्या होने वाला है, और क्या हम चूक सकते हैं अगर हम नहीं, अगर सही तरीके से उसको सुनेंगे तो कैसे हम उसका लाभ हमारा नष्ट हो जाएगा। तो आज का दिन इतना पवित्र दिन है कि आज के दिन प्रभु ने जन्म लिया। परित्राणा या साधु नाम विनाशाय दुष्कृतान धर्म समकापनार्थाय संभवामी योगे योगे। राक्षसों का अत्याचार होता है और धर्म का नाश होता है, तो भगवान साधुओं की रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए बार बार आते हैं, युगे युगे संभवामी युगे युगे। तो वैसे ही रावण का आतंक हुआ बहुत भयंकर। ऐसा है कि कई सारी कथाएं, हो सकता है थोड़ा आज कथा लंबा करेंगे और अगली बार भी उसको कंटिन्यू करेंगे। ये जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे वैकुंठ में। हाँ, सबको संक्षेप में बताते हैं। उन्होंने चार कुमारों का अपराध किया। ये चार कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र थे, लेकिन अपनी योग बल से वो केवल शरीर को 4 साल का ही बनाए रखे थे, क्योंकि शरीर बड़ा होने से उसमें सेक्स डिजायर उत्पन्न होता है, काम वासना बढ़ती है उसके अंदर शरीर के बढ़ने के साथ। तो ये सब जो शरीर की काम वासना है उसको हो ही नहीं उसको, इसलिए शरीर को 4 साल का योग बल से उन्होंने बना के रखा था, इसलिए नंगे घूमते थे नग्न अवस्था में। तो जब ही वैकुंठ में विष्णु को मिलने गए तो द्वारपाल जय और विजय ने, जो भगवान के भक्त हैं, उन्होंने रोक दिया उन्हें। तो उनका अपराध हुआ, इसलिए उन्होंने चार कुमारों ने जो 4 साल की नग्न अवस्था में थे शाप दे दिया उनको कि आप लोग राक्षस बन जाओ पृथ्वी पर जाकर। तो पहली बार वो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने। वराह देव और नरसिंह भगवान ने आकर अलग अलग से उनका वध कर दिया। दूसरी बार रावण और कुंभकर्ण बनकर आए, और तीसरी बार दंतवक्र और शिशुपाल बनकर आए, और दूसरी बार राम भगवान ने उनका वध किया, और तीसरी बार कृष्ण भगवान ने उनका वध किया। तो दूसरी बार रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ विश्रवा मुनि के माध्यम से। विश्रवा मुनि उनके पिता हैं, बड़े श्रेष्ठ मुनि थे वो, लेकिन भगवान की ऐसी इच्छा थी, उनके गर्भ से रावण का जन्म हुआ। इतना जोर से उसने गर्जना किया, उसको आप रोना भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने वो किया रावण ने, तो पूरी दुनिया भय के मारे रोने लगी, इसलिए उसका नाम रखा रावण, जो सबको रुलाने वाला है, रुदन कराने वाला है, इसलिए उसका नाम रावण कह गया। उसके बाद कुंभकर्ण का जन्म हुआ, उसके बाद विभीषण का जन्म हुआ। तो जब विश्रवा मुनि इनको जन्म देकर जाने लगे तो अपनी पत्नी को कहा कि जो पहले पुत्र है ना दो आपके, ये राक्षस कुल का नाश के कारण बनेंगे, लेकिन जो आखिरी पुत्र है ना विभीषण, ये संत है, ये राक्षस कुल में जन्मा हुआ एक संत है, उसके वजह से ये कुल का पूरा नाश होते होते वो बच जाएगा, यही उसको बचाएगा, दोनों कुल नाशी है, ये कुल को बचाने वाला है। ऐसे बोल के विश्रवा मुनि फिर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। फिर ये तीनों भाई, जैसे पुराने ज़माने में रिवाज था, आज के ज़माने में तो रिवाज सब खत्म हो गए, हर एक व्यक्ति मनुष्य का जन्म लेने के बाद थोड़ा सा बड़ा होने के बाद में उसको जंगल भेजते थे गुरु के पास तपस्या करने के लिए। राजा लोग भी जंगल में तपस्या करके बाद ही राजकुमार बनते थे ऊपर आके, फिर उसका राज्य का अभिषेक होता था। प्रियव्रत राजा, बड़े बड़े राजाओं का नाम आता है, उत्तानपाद, प्रचिनी भरीषित, अम्बरीश महाराज, स्वयं कृष्ण राम, कृष्ण बलराम जी, स्वयं राम लक्ष्मण हनुमान, राम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, कितने राजाओं का नाम लिया जाए, सब राजाओं ने अपने उम्र के बचपन में 12 साल तपस्या किया हुआ है ताकि वो राज ऋषि बने, हाँ केवल राजा भोग के लिए नहीं बने, पहले कड़ी तपस्या करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, राजा का पुत्र होने पर भी जंगल की लकड़ी काटेंगे, गुरु की आज्ञा पालन करेंगे और फिर सभी 18 विद्याओं में विभूषित होकर फिर राज्य को लौट जाएंगे, फिर अलंकार पहनेंगे, फिर श्रृंगार करेंगे, फिर विवाह होगा राजकन्या के साथ, फिर राजा बनेंगे। वैसे राक्षस कुल में भी ये नियम था, तो रावण, विभीषण और कुंभकर्ण सभी जंगल में गए और बहुत घनघोर तपस्या किया ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। इतना घनघोर तपस्या किया तो ब्रह्मा जी को दर्शन देना पड़ा, क्योंकि आगे और तपस्या करता तो और बहुत कुछ हासिल कर लेता। वो तपस्या दो प्रकार की होती है, एक स्वार्थ के लिए और एक भगवान के लिए। जब स्वार्थ से तपस्या करते हैं तो वो तपस्या करने से विश्व को कष्ट होता है, और जब भगवान की तपस्या करते हैं तो सब विश्व का कल्याण हो जाता है, उसी के साथ विश्व का भी कल्याण होता है। तो ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया तो सबसे पहले रावण ने बोला हमें अमर बना दो, ये कॉमन है सब कुछ, सब राक्षसों के अंदर, ऑल डीमंस, सब राक्षस लोग जब तपस्या करते हैं तो एक ही मन में विचार लेके तपस्या करते हैं कि मैं अमर बन जाऊं, यही उनके अज्ञान का सबसे बड़ा मूल है कि वो अमर बनना चाहते हैं। लेकिन भौतिक दुनिया को भगवान ने कैसे बनाया है, यहाँ पर कोई अमर नहीं है। तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, अरे तुमको लगता है मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, लेकिन मैं भगवान का पुत्र हूँ, ये बात तो सच है, लेकिन मैं भी मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ, ब्रह्मा होने के बाद भी मेरा भी जन्म होता है, मेरे भी मृत्यु होती है, तो मैं अगर स्वयं अमर नहीं हूँ तो तुम्हें कैसे अमरता का वरदान दे दूँ, अगर मेरे पास शक्ति होती अमरता का वरदान देने की तो पहले मैं खुद को अमर करता। तो फिर रावण ने सोचा कि अभी दिमाग लगाकर बुद्धि से वरदान मांगेंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे देवताओं से, असुरों से, दानवों से और दैत्यों से मेरा वध नहीं होना चाहिए, और साथ साथ बहुत सारी सिद्धियां मांग ली उन्होंने, बहुत सारे ना रात को अदृश्य होने की कला, हवा में उड़ने की कला, बहुत सारे ऐसे विद्याएं होती है, वो सब विद्याओं को मांग लिया, सिद्धियों को मांग लिया, और इन चार वस्तुओं से वध करना मना कर लिया उन्होंने अपनी तरफ। कहा क्या बताया, देवता, सुर मतलब देवता, असुर राक्षस और दैत्य, ये तीन प्रकार के राक्षस होते हैं, एक दानु माता के पुत्र थे, एक दीति के पुत्र थे और एक अदिति के पुत्र थे, तो तीन कश्यप मुनि की पत्नियां थी, चार पत्नियां थी, एक थी दीति जिसकी वजह से दैत्य निर्माण हुए, एक थी अदिति जिसकी वजह से देवता निर्माण हुए, एक थी दानु जिसकी वजह से दानव निर्माण हुए। तो उन्होंने इनसे वरदान मांगा, फिर कुंभकर्ण का समय आया तो कुंभकर्ण ने इंद्र का पद मांगने का सोच लिया कि मैं इंद्र का पद मांगना सोच लिया। तो फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, सरस्वती को प्रेरणा दिया कि जाओ इसकी जिह्वा पर बैठो और इसकी जिह्वा को ट्विस्ट करो। तो उसको बोलना था इंद्रासन चाहिए, तो वो बोला निद्रासन चाहिए, उसके मुँह से निद्रासन निकला, तो तुरंत ब्रह्मा ने तथास्तु कर दिया उसको, फिर उसने पछतावा किया, नहीं 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 मुझे ऐसा नहीं कहना था। बोले कि आपने जो बोला हमने तथास्तु कह दिया, अभी पत्थर की लकीर बन गई, अभी कुछ नहीं कर सकते आप। फिर विभीषण का नंबर आया, विभीषण ने क्या मांगा, हम सब लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। वो भी राक्षस कुल का ही था, उसका भी कुल इतना श्रेष्ठ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने प्रभु की भक्ति और प्रभु की सेवा मांगी, प्रभु की स्मृति मांगी उसने कि मुझे हर समय जहाँ पर भी मैं रहूँ प्रभु की याद आती रहे, और प्रभु की याद में उनकी सेवा में मैं हमेशा बना रहूँ। इसलिए विभीषण को महाजनों में से एक माना गया है। और विभीषण के उदाहरण से हम सीख भी सकते हैं कि महात्मा बनने के लिए अच्छे कुल के जन्म की आवश्यकता भी नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मण बनने की जरूरत नहीं है, बहुत धनवान होने की भी जरूरत नहीं है। ये सब होते हुए या ना होते हुए भगवान के भजन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे ही रावण इतनी सिद्धियां प्राप्त कर चुका, इतनी विद्याएं प्राप्त कर चुका, और बाकी उनको अभय मिल गया सब लोगों से, तो उसका गर्व बहुत बढ़ गया, उसने जा जाकर लोगों से ललकारना शुरू किया। सबसे पहले अपने सौतेले भाई के पास गया, जो देवताओं का वो था, क्या कहते हैं उसको, कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर, संपत्ति का मालिक देवताओं का। उस पर युद्ध किया उसने, और कुबेर के पास में क्या था, पुष्पक विमान था। आपने सुना होगा बोइंग 747, एयरबस 300, हाँ उसको पेट्रोल की जरूरत होती है, एयर पैक्ड एयर टाइट कमरे में बैठकर आपको यात्रा करनी होती है। ये ऐसा विमान था जिसमें जितने चाहे उतने यात्री बैठ सकते हैं, 1,000,00,00,00,10,00,00,100,00,00,001,000,00,00,00 जितने भी लोग आएंगे उतना, नो वेटिंग लिस्ट, जा सकते हैं उसके ऊपर, कोई एयर टाइट कंपार्टमेंट भी नहीं, और मन की गति से चलने वाला। उसके अंदर आपको पौंड भी मिलेगा, सरोवर मिलेगा, उद्यान मिलेंगे, क्या नहीं, शहर जैसा ही होगा, पूरा शहर हवा में उड़ रहा है, और जितने चाहे उतने लोग चल रहे हैं उसके अंदर। 140 करोड़ लोगों को लेकर हनुमान जी, प्रभु रामचंद्र जो है सीता को प्राप्त करने के बाद में उनको सबको लेकर अयोध्या गए थे, इसी पुष्पक विमान पर बैठ के। कितने, 70 करोड़ वानर, एक एक की एक एक पत्नी, 70 करोड़ पत्नियां, 140 करोड़ लोगों को लेकर गए थे, ऐसा विमान था वो। वो रावण को चाहिए था, जो जो दुनिया में अच्छी वस्तु है वो मेरे लिए चाहिए, इस प्रवृत्ति को राक्षस कहते हैं, याद रखना। इसको कोई एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, महान व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकते हैं। दुनिया में जो जो अच्छी वस्तु है वो मेरी होनी चाहिए, ये जिसको लगता है वो राक्षस है, ये समझना। वो कितना भी सूट बूट टाई में गोरा गोरा PhD होगा, फिर भी आप समझना ये राक्षसी प्रवृत्ति है। क्योंकि तो राक्षस जो है वो जन्म से नहीं बनता है, वो कर्म से बनता है। क्योंकि उसके पिता कौन थे, विश्रवा मुनि थे, जाति क्या थी उसके, वो ब्राह्मण था, वो बड़ा विद्वान था रावण, बहुत बड़ा प्रकांड पंडित था वो, उसके पिता जैसा। फिर भी हम राक्षस क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि प्रवृत्ति उसकी ये थी कि जो भी दुनिया में भोग्य भोगने वाली वस्तु है वो मेरी होनी चाहिए, हर एक सुंदर वस्तु, चमचमाती हुई वस्तु जो है वो मेरी होनी चाहिए। इस प्रवृत्ति को राक्षस प्रवृत्ति कहते हैं, इस प्रवृत्ति से बचो। हाँ, दुनिया की हर जो चमचमाती वस्तु है वो भगवान के लिए होती है, हम केवल उन वस्तुओं को भगवान को कैसे अर्पण करें इस विचार में रहते हैं, और दुनिया की हर वस्तु भगवान को अर्पण करनी है, ये विचारधारा जो है ये भक्त की विचारधारा है। और रावण ने क्या बोला, जो तुम्हारा है, जो मेरा नहीं है वो भी मुझे मिलना चाहिए, इसको राक्षसी प्रवृत्ति कहते हैं। पराया धन जो है वो मेरा होना चाहिए, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। तो कुबेर के साथ युद्ध किया, उसका पुष्पक विमान छीन लिया, और नए नए प्राप्त किए, चोरी किए, हड़प लिया हुआ पुष्पक विमान पर बैठकर जब जा रहा था, तो अचानक जंगल में एक सुंदर कन्या को तपस्या करते हुए देखा। वो इतनी सुंदर थी कि उसकी शरीर से प्रकाश निकलता था, तो उतर गया और उसको शरीर को देखकर उसको बहुत वासना निर्माण हुई। उसने पूछा, तुम कौन हो? तो वो कहते, मैं वेदवती हूँ, वेदों से उत्पन्न हुई हूँ, वेद माता हूँ, और मैं विष्णु भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। तो कहते, विष्णु विष्णु क्या होता है, मैं तुम्हारे लिए पति के योग्य हूँ। ये तपस्या बंद करो, ये जटा धारण किया उसको अच्छी तरह से बालों को संवारो, अच्छे अलंकार वस्त्र पहनो और मेरी रानी बनो। तो उसने कहा कि इस जन्म में मैं केवल विष्णु को मैंने अपने मन में हर लिया है, मन में ले लिया है। एक बार किसी एक पुरुष को मन में लेने के बाद में दूसरे पुरुष को वो स्त्रियाएं अपने मन में नहीं लेती थी, इतनी पतिव्रतता उनके अंदर थी। फिर भी जबरदस्ती उसने जाकर उसको छुआ और अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। उस समय वो वेदवती जो है बहुत क्रोधित हो गई और उसने कहा कि तुम्हारा स्पर्श होने से मेरा शरीर अभी मलिन हो गया है, अब मैं इसको त्याग दूंगी क्योंकि ये अभी मेरे लहरे लायक नहीं रहा, क्योंकि तुझ जैसे पापी व्यक्ति का उसमें जो काम वासना पूर्ण हाथ है वो लगा हुआ है, इसलिए मैं मेरे मंत्र उच्चारण करने से शरीर को नष्ट कर दूंगी। लेकिन मरने के पहले मैं आपको शाप देती हूं कि मैं दोबारा जन्म लूंगी और तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी। और उसी ने जाकर फिर जनक राजा के घर पे जन्म लिया सीता जी के रूप में। जनक राजा जब यज्ञ के लिए अपने जमीन को क्या कर रहे थे उसको ना नांगर रहे थे ना नांगरते थे क्या बोलते उसको हिंदी में खल हल चलाते थे ना, उस समय उस जमीन को वो तैयार कर रहे थे यज्ञ के लिए, तो जमीन के छेद में सीता मतलब जमीन का छेद उसके अंदर से ये कन्या प्राप्त हुई, सुनहरे रंग की चमकती हुई आभापूर्ण। एनीवे तो ये कथा समाप्त हुई और वो मंत्र बोलकर अपने शरीर को उसने जला लिया। तो रावण एकदम दंग रह गया, अरे भोग लेने गया था लेकिन एक सांप लेके लौट गया। फिर वो आकाश में उड़ रहा है, अभी तक उसको इतनी बोध नहीं प्राप्त हुआ है, एक गलती किया इतना बड़ा शाप प्राप्त हुआ। तो रंभा को उधर स्वर्गलोक से आ रहा था ना कुबेर से पुष्पक विमान को जीत कर, अब तक पृथ्वी पर पहुंचा नहीं है, स्वर्गलोक से ही यात्रा करके आ रहा है नीचे से। तो वहां पर क्या देखा है, रंभा नाम की स्वर्गलोक की बहुत सुंदर औरत है, रंभा मेनका उर्वशी सब बहुत बहुत फेमस स्त्रियां हैं स्वर्गलोक की। उसमें से ये रंभा जो है ये कुबेर के पुत्र के ही बेटी है, कुबेर मतलब क्या हो गया उसका सौतेला भाई कुबेर, कुबेर का पुत्र यानी इसका क्या हो गया भतीजा हो गया, तो भतीजे की पुत्र वधु मतलब अपनी ही बेटी जैसे होगी ना वो। फिर भी वासना जब होती है ना कामातुराणाम न भयम न लज्जा, जब काम वासना से कोई व्यक्ति व्याकुल होता है तो उसको लज्जा भी नहीं आती है और न भय भी होता है किस चीज़ का, ये पता भी नहीं कि मेरी बेटी जैसी है वो। उसके ऊपर झपट गया वो, उसका विनय भंग किया उसने, वो बहुत चिल्लाई लेकिन कुछ नहीं कर पाए कोई लोग, क्योंकि वो ऑलरेडी कुबेर जैसे वीर को परास्त करके आ रहा था। तो नल कुबेर जो उसका पति था जो कुबेर का बेटा था वो तो बोला मेरे पिताजी को परास्त करके आ रहा है मैं क्या करूँगा, असहाय होकर उसने एक वहाँ पर बैठ के शाप दिया उसको। उसका पत्नी का तो विनय भंग हो गया, फिर ब्राह्मण था ना वो देवता ब्राह्मण होते हैं, तो शाप दिया कि इसके बाद अगर किसी भी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना तुम स्पर्श करोगे तो तुम्हारे सर के 1000 टुकड़े होकर तुम मर जाओगे। ये शाप सुनकर भी वो चकित हो गया लेकिन फिर बोध नहीं हुआ उसका। फिर वो कैलाश की ओर जा रहा था तो उसको रोका गया कि यहां से मत जाओ, ये शिवजी महाराज का एरिया है। तो फिर भी उसका परवाह नहीं किया उसने, सीधा घुस गया तो नंदी ने आके उसको रोक लिया। नंदी को बोला, ए नंदी तेरा चेहरा जो है वो बंदर जैसा है। तो नंदी ने उसको शाप दे दिया, उसने कहा जिस बंदरों का नाम लेकर तू मुझे हंस रहा है और मेरे लिए गलत बातें कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, वही बंदर करोड़ों की संख्या में जन्म लेकर बलवान होकर तुझे परास्त करने में और तेरा नाश करने में सहायता करेंगे। फिर एक शाप मिला, फिर आगे गया तो उसको बताया गया कि ये कैलाश पर्वत है। तो उसका इतना बल का गर्व था उसने पूरे कैलाश को उठा लिया अपने 20 हाथों से, बड़ा गर्व हुआ उसको, ऐसा जोर जोर से हिला हिला कर उसको उठाया उसने। तो पार्वती जी और शिव जी महाराज बैठे थे, तो आराम से बैठे थे, तो अचानक जब उठाया गया तो पार्वती जी ऐसे शिव जी के ऊपर ऐसे धक्का लग गया उनको, बड़ी परेशान हो गई वो, क्या चल रहा है पतिदेव स्वामी क्या हो रहा है, उन्हें कोई ना एक मूर्ख बालक उद्दंड कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि उसका उपाय करो, तो शिवजी महाराज ने केवल एक अंगूठा निकाला बाहर और अब जहां पर बैठे हुए थे उसको दबाया, जैसे ही शिवजी महाराज ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से जमीन को दबाया, पर्वत को दबाया, तो इसके 200 हाथ एकदम क्रश हो गए, पूरे कुचल गए पूरे। और ऐसे कहा है कि 100 साल तक शिवजी ने वो अंगूठा दबाए रखा और 100 साल स्वर्गीय 100 साल तक इसके 20 हाथ कुचलते रहे। उसके बाद त्राही माम पुकारा तो शिवजी ने अंगूठा निकाल दिया। फिर उसने कहा कि माफ करना महाराज जी, मैं आपका भक्त हूँ। हाँ, तुरंत भक्त बनने का स्वार्थी है ना व्यक्ति। अभी तो शिवजी महाराज के बारे में बताया गया था तो अपमान जैसे बातें कर रहा था, और अभी पता चला कि ये व्यक्ति हमसे बलवान है, चाहे वो देवता हो कुछ भी हो, तो बोले कि हम भी आपके भक्त हैं, हमको माफ़ कर देना, ये हमारे हाथ ठीक कर देना। तो शिवजी ने हाथ ठीक कर दिए तो उन्हें कहा कि अभी वरदान भी देना हमको, हम भी आपके भक्त हैं। बोले क्या चाहिए? तो बोलते हैं पशुपतास्त्र चाहिए, जो ब्रह्मास्त्र से भी बलवान माना गया है, क्योंकि महादेव जो हैं वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन वो तो जन्म लेने का तरीका है उनका पृथ्वी पर आने का, लेकिन महादेव जी ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हैं, तो उनका अस्त्र भी ब्रह्मा के अस्त्र से भी श्रेष्ठ हैं। अर्जुन को भी ये अस्त्र प्राप्त हुआ था जब उसने शिव जी से युद्ध किया था, तो वो प्राप्त करके वो आ गया। फिर आते आते उन्होंने दशरथ महाराज के पिताजी का साथ युद्ध किया, मतलब जा जाकर युद्ध छेड़ना, ललकारना और लोगों का हत्या करना, ये करते करते ही वो आ रहा था, इतना उन्मत्त हो गया था। तो उसने दशरथ के पिता के साथ युद्ध किया और दशरथ के पिता का वध कर दिया। इस तरह से बहुत सारे पापों का, अभी और हमने पूरा बताया नहीं, कई सारी स्त्रियों का उसने विनय भंग किया और सबके द्वारा पाप शाप और पाप जमा करते करते वो जा रहा था। फिर भी राक्षसी प्रवृत्ति नष्ट नहीं हुई क्योंकि इतना गर्व था उसको। तो उसी समय पिता के मृत्यु के बाद दशरथ राजा बने, अयोध्या के राजा बने। सब लोग सुन रहे हैं ना, बोलिए जय श्री राम, जोर से बोलिए जय श्री राम,
जय श्री राम।
दशरथ महाराज के राज्य में ये प्रभु रामचंद्र के जन्म होने की कथा जो है, इसके ये पहले कथा करना जरूरी है क्योंकि आपको समझ में आएगा कि बैकग्राउंड कैसे था इसका। तो यहाँ पर रावण ने जन्म लेकर अपने भाइयों के साथ में तपस्या करके वरदान मांगकर आतंक मचाना शुरू कर दिया था। और इसके पहले कुबेर का मैंने आपको एक उदाहरण दिया, लेकिन सभी देवताओं को ब्रह्मा रावण ने परास्त कर दिया, सभी को नौकर बना दिया, कुछ लोग भाग गए डर के मारे, ऐसे बहुत हाहाकार मचा दिया। तो इस बीच दशरथ राजा बने अयोध्या के। इतने धर्मऋषि थे वो, राजऋषि थे, कि उनके राज्य में शनि का काल का प्रभाव होता नहीं था। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, समय नहीं है, जगह नहीं है, व्यक्ति नहीं है जिस पर शनि का प्रभाव नहीं होता है। शनि का ड्यूटी है वो। तो शनि की वक्र दृष्टि दशरथ महाराज के राज्य पर नहीं होती थी, इतना उनका पवित्र था। इतने बड़े योद्धा थे वो, एक तो नंबर वन के, और साथ साथ उनका पवित्रता तो हृदय की थी, वो इतनी शक्तिशाली थी। तो बहुत ऐसा है ना, शनि का जो होता ना काल प्रभाव, वो कुछ साइकिल में आता है, वो राहु केतु सबका टाइम होने के बाद एक बार शनि का टाइम आता है, फिर वो होने के बाद वापस सबका साइकिल शुरू होता है, फिर शनि का टाइम आता है। ऐसे साइकिल में कई साइकिल ऐसे बीत गए, कई चक्र ऐसे बीत गए, लेकिन शनि को अपना प्रभाव करना नहीं मुमकिन हुआ। तो फिर एक बार शनि ने सोचा कि मुझे एक बार आक्रमण करना होगा अयोध्या के ऊपर, तो मेरा जो ड्यूटी है, मेरा बुरा काल देने का, वो इसमें लागू करना होगा। तो जैसे ही पता चला कि शनि महाराज रथ में बैठकर अयोध्या पर आक्रमण कर रहे हैं, दशरथ ने भी अपना सेना लगाया और सेनापति बनकर वो ललकारने के लिए शनि के लिए द्वार अयोध्या के बाहर ही उन्होंने रोक लिया उनको। और बहुत भयंकर युद्ध हुआ उनके बीच में, इतना भयंकर युद्ध हुआ, कई सालों तक चला वो युद्ध। दशरथ महाराज का एक तो वीरता थी और एक तो भक्त थे वो भगवान के, बहुत पावरफुल थे वो, शनि भी तो देवता हैं। बहुत भयंकर युद्ध होने के बाद में शनि ने एक ऐसा अस्त्र फेंका कि दशरथ जो है, ये युद्ध जो था वो आकाश में चल रहा था, दोनों रथ पे सवार और आकाश में दिव्यास्त्रों के साथ युद्ध चल रही थी। तो शनि ने ऐसा अस्त्र फेंका कि जो अस्त्र का प्रहार लगते ही दशरथ महाराज बेहोश होकर रथ से गिर गए, मतलब आकाश से बड़ी तेजी के साथ बेहोश होकर जमीन की ओर पटकने के लिए आ रहे थे। उस समय जो उनके परम मित्र थे जटायु, वो इस युद्ध को देख रहे थे दूर से। वो गीदड़ों को क्या होता है ना, बहुत दूर दूर तक दिखाई पड़ता है, कई लाख किलोमीटर तक देख सकते हो। जो संपाति था ना, उसका भाई जटायु का, वो समुद्र किनारे में बैठकर लंका में बैठी हुई सीता को भी देख रहा था इतनी दूर। उसने ही बताया कि सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई। तो ऐसी होती है गिदड़ की दृष्टि। तो ये जो गिदड़ थे जटायु, ये दूर बैठकर देख रहे थे कि इनका युद्ध हो रहा है, और अचानक देखा कि दशरथ महाराज गिर रहे हैं। तो उनकी गिरने की गति से भी अधिक गति से उड़कर नीचे जाकर जटायु ने अपने पंख फैलाए और महाराज को कैच कर लिया, और धीरे से बेहोश महाराज को लेकर जमीन पे आए, उनका शुश्रूषा किया, ट्रीटमेंट किया उनका, उनको होश में लाया। होश में आते ही तुरंत चिल्ला उठे, जटायु तुम मुझे यहां पर क्यों ले आए, मुझे रणभूमि में होना चाहिए शनि के साथ, तुम मुझे यहां क्यों लेके आए। क्रोध किया उन्होंने उन पर। जटायु ने कहा तुम बेहोश हो गए थे इसलिए मैं तुमको यहां पर लाया। तो बड़े कृतज्ञ भाव का अनुभव किया उन्होंने, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मरते हुए गिरते हुए उठाया और मेरी रक्षा की, चलो मुझे दोबारा लेके चलो। तो फिर जटायु के पंखों पर बैठकर फिर जहां रथ था आकाश में वहां पर जाके बिठाया गया, और फिर दशरथ महाराज ने शनि को ललकारा, सावधान। तो शनि को इतना आश्चर्य हुआ, अरे मेरे द्वारा अस्त्र का आघात सहन करने पर भी जो बेहोश होकर गिर सकता है वो दोबारा मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर सकता है। इसको देख के शनि महाराज प्रसन्न हो गए, बोला युद्ध बंद कर दो, हम आप पे बड़ा प्रसन्न है और हम वादा करते हैं कि कभी भी आगे आपके अयोध्या पर हमारा कालावधि का प्रभाव नहीं होगा। वरदान दे दिया परमानेंटली कि आपके राज्य के ऊपर हम कभी नहीं आएंगे। उस समय राजा दशरथ ने जटायु को वादा किया कि मित्र तुम मेरे सच्चे मित्र हो, बड़े बाकिस प्रसंग पे तुमने मेरा रक्षा किया है, तो जब मेरा पहला पुत्र होगा तो मैं तुम्हें वो दान दूंगा। ऐसा उन्होंने वादा किया और दोनों चले गए अपने अपने जगह पर। यहां पर बहुत समय बीता, दशरथ राजा को एक कन्या हुई, उसका नाम था शांता। उस शांता को उसने एक अपने मित्र को गोद दे दिया क्योंकि उसको पुत्र नहीं था। बड़ी लंबी लंबी कहानियां है, बहुत अपना जो शास्त्र है सुंदर सुंदर बोधपूर्ण कहानियों से भरा हुआ है। तो शांता को अपने मित्र को गोद दे दिया, फिर उसकी शादी ऋषि सिंह नाम के ऋषि से हुई, ऋष्यमुख ऋषि से हुई, और इस ऋष्यमुख ऋषि को बुलाया गया कि दशरथ महाराज को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, बूढ़ी अवस्था हो गई उनकी फिर भी पुत्र नहीं हो रहा है। तो सब कुछ था उनके पास, उनके राज्य में सब कुछ पवित्रता थी, शनि का प्रभाव नहीं था, समृद्धि थी, विद्या थी, भजन था, भक्ति थी, उसके राज्य का वर्णन किया गया है, कभी वर्षा ज़्यादा या कम नहीं हुआ करती थी, जितनी आवश्यक और उतनी खेतों में हुआ करती थी, बस केवल रात को ही हुआ करती थी, सब तरह समुद्र थी समृद्धि, कोई कष्ट नहीं था, प्रकृति के तरफ से कोई कष्ट नहीं था, अयोध्या के राज में कोई बीमार नहीं पड़ता था राजा के भक्ति के बल के वजह से। अभी राजा खुद बीमार पड़ता है, उसका भी ऑपरेशन करना पड़ता है, तो ये सब जमाना गया अभी। हाँ, तो ऐसे वशिष्ठ मुनि को उन्होंने सलाह किया, उनके गुरु थे दशरथ राजा के, उन्होंने कहा कि कैसे किया जाए, मेरे को पुत्र नहीं हो रहा है। तो उन्होंने पहले तो अश्वमेध यज्ञ किया ऋष्यशृंग ऋषि के सहायता से, फिर उस मुनि ने कहा कि आपको पुत्र कामिष्ट यज्ञ करना पड़ेगा, मतलब क्या पुत्र काम इष्टि, पुत्र की इच्छा से किया हुआ यज्ञ को पुत्र कामिष्ट यज्ञ कहते हैं। तब वो यज्ञ जब किया, बड़ी लंबी लंबी कहानी आपको संक्षेप बता रहे हैं, वो जब यज्ञ किया तो उस यज्ञ के अग्नि से एक बहुत तेजायमान पुरुष अवतार हुआ, उसका प्रकट हो गया वो, उसके हाथ में सोने का कलश था और उसमें चावल का खीर प्रसाद था, वो यज्ञ से बाहर आया और उसने कहा, महाराज आपने जो यज्ञ किया है उसके प्रसाद आपको पहुंचाने के लिए विष्णु की तरफ से मैं आया हूं, ये प्रसाद जो है अपनी पत्नियों को दे दो और यथावकाश वो गर्भवती हो जाएंगी और आपको चार पुत्रों की प्राप्ति होगी। तो जब ये यज्ञ की और पुत्र प्राप्ति की बातें हो रही थी, तभी वशिष्ठ ने उनको याद दिलाया कि मुझे पुराणों का एक संवाद जो है वो याद आ रहा है, जिसमें मैंने सुना था कि दशरथ राजा को चार पुत्र होंगे, तो इसलिए आप पुत्र का मिष्टि जरूर करना। तो विष्णु का फल जो है वो मतलब खीर के रूप में उनको प्राप्त हुआ। तो राजा दशरथ को तीन पत्नियां थी, आपको याद है उनका नाम क्या क्या है, कोई बता सकता है?
कौशल्या,
कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या सबसे सीनियर थी, नंबर वन, और कैकेयी सबसे छोटी थी और बीच वाली थी सुमित्रा। तो उन्होंने उस खीर का दो हिस्सा किया और एक हिस्सा कौशल्या को दिया और दूसरा हिस्सा कैकेयी को दिया। कैकेयी बहुत सुंदर और जवान थी, बड़ी प्रिय थी दशरथ राजा को। फिर दोनों का माताओं ने, दोनों पत्नियों ने अपने अपने हिस्से से आधा आधा हिस्सा सुमित्रा को दिया और सबने वो पाया, मतलब जो बचा हुआ, एक तो आधा दिया ना, मतलब आधा से आधा दिया, कितना बचा? एक चौथाई बचा। तो एक चौथाई कौशल्या ने खाया, एक चौथाई कैकेयी ने खाया, और कितना बचा बीच में? आधा बचा ना, हाँ बराबर, सब लोग जग रहे इसका मतलब वो सुमित्रा ने खाया। और यथावकाश ऐसे कहा गया कि 12 महीने की प्रेगनेंसी के बाद में आज के दिन चैत्र शुद्ध नवमी के पवित्र दिवस पर दोपहर के समय पर प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ। बोलो प्रभु रामचंद्र भगवान की। बीच में एक छोटी कथा बताना भूल गया मैं आपको। जब ये पुत्र कामिष्ट यज्ञ की बातें हो रही थी, करना है, उसी समय सभी देवताएं वैकुंठ में भगवान को मिलने गए और उन्हें भगवान से बताया, भगवान हम लोग सब लोग आतंकित हो गए हैं, त्रस्त हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, ये रावण ने अपने राक्षसों के साथ में हाहाकार मचा दिया है। ये ब्रह्मा जी के पास गए और ये बातें हो ही रही थी, क्योंकि ब्रह्मा जी को कहते हैं कि अरे आपने तो उनको वरदान दिया है कि वो हमसे या दानवों से, दैत्यों से, किसी से नहीं मरेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ मैंने वरदान दिया था उनको, तो उसी की वजह से हम लोग को आतंक हो रहा है। ब्रह्मा जी ने बहुत विचार किया, क्या जवाब दे भाई, इतने सारे लोग परेशान होकर आए हुए हैं, हाउ टू सॉल्व द सिचुएशन। ब्रह्मा जी ने विचार किया और कहा कि हाँ एक बात जरूर है, उसने मनुष्य और जानवर से वध होने का, अवध्य मतलब वध से बचने का वरदान नहीं मांगा है, क्योंकि मनुष्य और जानवरों को बहुत तुच्छ मानता है वो, कहते हैं तो मैं ब्रेकफास्ट में खाता हूँ डरना इनके, इनसे डरने का मतलब क्या है, हम तो इसको ब्रेकफास्ट में खाते, उस पर क्या वरदान मांगे कि इनसे भी बचाया जाए मुझे। तो ये जब बातें हो रही थी, ब्रह्मा जी समझा रहे थे कि उन्होंने मनुष्य और जानवरों से नहीं मरने का वरदान नहीं मांगा है, तो फिर क्या हुआ, उसी समय ब्रह्मा पर विष्णु प्रकट हो गए और विष्णु भगवान ने कहा कि मैं अभी मनुष्य रूप में आऊंगा और तुम सब लोग, देवताओं को आदेश देते, तुम सब लोग अपने अपने शक्ति के द्वारा अपनी अपनी स्त्रियों से एक एक पुत्र उत्पन्न करना। और उसका वर्णन दिया उन्होंने कि वो पुत्र कैसा होना चाहिए, वो बलवान होना चाहिए, उनके अंदर अनेक विद्याएं होनी चाहिए, बहुत बुद्धिमान होने चाहिए, वीर होने चाहिए युद्ध कला में, ऐसे बहुत वर्णन दिया और सबको देवताओं को आदेश दिया कि आप अपनी अपनी पत्नियों से एक एक पुत्र निर्माण करो और सबको पृथ्वी पर भेजो और अब्जावधि संख्या में वानर सेना पृथ्वी पर पैदा करो। तो तुरंत देवता लोग भगवान विष्णु के आदेश और आश्वासन प्राप्त करके बड़े प्रसन्न होकर पृथ्वी पर अपने अपने लोकों में चले गए और तुरंत ही उन्होंने पुत्रों को जन्म दिया। ऐसा है कि उनका, देवताओं का एक विशेषता मैंने आज पढ़ी कि देवताओं के जब पुत्र होते हैं तो उनको प्रेगनेंसी को सहन नहीं करना पड़ता है, जैसे ही पेट में बालक आ गया तुरंत डिलीवरी, इसलिए बहुत ही जल्दी विचार करने मात्र से ही लाखों करोड़ों अरबों संख्या में वानर उत्पन्न हुए देवताओं के माध्यम से, मतलब पिताजी देवता लेकिन पुत्र वानर, इस तरह से सूर्य की ओर से कौन पैदा हुआ? वाली। इंद्र की ओर से कौन पैदा हुआ? सुग्रीव। नल, नील, ऐसे बहुत सुंदर और बहुत विद्वान और बहुत ही शक्तिशाली, अनेक विद्याओं में निपुण, अनेक कलाओं से निपुण वीर योद्धा के रूप में ये सब जानवर, ये जो बंदर है, वो सब पृथ्वी प्रकट हुए और सब जगह पर फल वल खा के एकदम उनका जो उपस्थिति था सबको दिखाई पड़ा कि ये आ गए हैं अभी। और उसके बाद में पुत्र कामिष्ठ युग हुआ और उसके बाद में भगवान ने जन्म लिया। जब भगवान ने जन्म लिया तो उसी समय आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, सब फूल बरसाए सबके ऊपर। उसी समय, उसी दिन, कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद में कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और दो दिन के बाद में सुमित्रा ने शत्रुघ्न और लक्ष्मण को जन्म दिया। तो क्योंकि अपने से एक हिस्सा निकालकर कौशल्या ने सुमित्रा को दिया था और अपने से एक हिस्सा निकालकर कैकेयी ने भी सुमित्रा को दिया था, इसलिए सुमित्रा का एक बालक जो है वो कैकेयी के एक बालक से बहुत ही आसक्त था। मतलब क्या हुआ? भरत से शत्रुघ्न का बहुत प्रेम था और राम से लक्ष्मण का बहुत प्रेम था, क्योंकि वो उनके ही हिस्से से दो हुए थे ना। वास्तव में वो जो हिस्सा दशरथ ने कौशल्या को दिया था उसके दो पुत्र हुए एक्चुअली, राम और लक्ष्मण, और जो कैकेयी को दिया था उससे दो पुत्र हुए, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन शत्रुघ्न और लक्ष्मण सुमित्रा के गर्भ से आए और भरत कैकेयी से और राम कौशल्या से आए। तो राम जी का बचपन जो है बहुत ही लुभावना था। हमने सुना ना, ठुमक ठुमक रामचंद्र बाजत पैंजनिया सु ठुमक ठुमक। जैसे जैसे ये बालक बड़े होते गए सबको उन्होंने बहुत आनंद दिया अयोध्या में। अयोध्या में इतने साल तक दुख था कि सबको समृद्धि है, ऐश्वर्य है, लेकिन पुत्र नहीं है तो राज्य का वारस कौन बनेगा। लेकिन इनके आते ही अयोध्या पूरी झगमगा उठी आनंद से, मन के, तन के, बुद्धि के, आत्मा के आनंद से अयोध्या बहुत समृद्ध हो गई और सभी लोगों ने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को जन्म होते हुए देखा और उसके बाद में बढ़ते हुए देखा। और जैसे ये जरा जरा से बढ़ने लगे तो उनके दिव्य गुण भी प्रकट होने लगे। उस दिव्य गुणों को, व्यवहार को देखकर सभी अयोध्यावासी प्रभु रामचंद्र के और उनके बालकों के प्रेम में आसक्त हो गए। लेकिन सबसे अधिक श्रेष्ठ गुण श्री राम जी के यहाँ से प्रकट हुई, इसलिए हर एक अयोध्यावासी श्री राम जी के प्रति इतना आसक्त हो गया कि वो अयोध्या और राम एक समीकरण बन गया। हाँ, मतलब अयोध्या राम के बिना सोचना उनके लिए नामुमकिन हो गया और राम के बिना अयोध्या, अयोध्या के बिना राम इम्पॉसिबल। इसलिए जब वनवास जाने लगे तो पूरे अयोध्यावासी सब कुछ छोड़कर गए उनके पीछे। उन्होंने कहा जहाँ आप हो वहीं अयोध्या है, अगर जंगल में आप जाने वाले हो तो वही मेरे अयोध्या होगी और यहाँ रहने वाले हो तो यहाँ अयोध्या है, अगर आप यहाँ रहने वाले हो नहीं हो तो अयोध्या का नाम अयोध्या होने से क्या मतलब है, वो तो जंगल बनेगा, वनवास का अनुभव करेंगे वहाँ पर। इसलिए अगर आप वन में जाएंगे तो हम सब लोग वन में जाएंगे। इतने प्रभु रामचंद्र के अंदर अनंत सद्गुण थे जिसको देखकर, अनुभव करके सब उनके भक्त और सब उनके आसक्त हो गए। यथावकाश कुछ दिन के बाद में वशिष्ठ मुनि ने उनका नामकरण किया और कुछ दिन के बाद में उनका उपनयन संस्कार किया। इसका मतलब क्या हुआ? जनेऊ संस्कार, ब्राह्मण दीक्षा दिया उनको, गायत्री मंत्र। वशिष्ठ के आश्रम में रहकर उन्होंने तपस्या किया और फिर एक दिन जब ये सुंदर से बालक जो है, छोटे से बालक थे, 12 साल की उम्र थी उनकी, अपने पिता के साथ सभा में बैठे हुए थे, अनंत सूर्यों के समान सभा में शोभा प्राप्त हो रही थी इन चार बालकों के होने से। इनके प्रसन्न मुख कमल देखते हुए सब लोग प्रसन्न हो रहे थे। उतने में हजारों सूर्यों समान प्रकाशित विश्वामित्र मुनि वहां पर आते हैं। उनको देखकर दशरथ महाराज उठ जाते हैं अपने सिंहासन से और उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और अपने आसन पर बिठाते हैं, उनके पैर धोते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, फिर क्षेम कुशल पूछते हैं। तो विश्वामित्र मुनि को ये सब स्वागत पूजा आदि होने के बाद में दशरथ महाराज प्रश्न करते हैं कि आपका आगमन कैसे हुआ, कैसे अयोध्यापति मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा काम तो यज्ञ करना है, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरा यज्ञ जहां पर मैं करने जा रहा हूं वहां पर रावण के प्रतिनिधि सुबाहु और ताड़का, एक पुरुष राक्षस एक स्त्री राक्षसी, उस राक्षस यज्ञ के अंत में उसको दूषित कर देते हैं, मतलब आकाश से मल मूत्र का वर्षा करते हैं, उसके ऊपर हड्डी मांस रक्त का वर्षाव करते हैं, वो मेरे यज्ञ का सफल होते होते ही वो नष्ट हो जाता है। तो वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अभी सेना लेके निकलता हूँ, मेरी चतुरंगी सेना जो है आपके सेवा में हाजिर है। बोलते नहीं, क्योंकि राजा का ऐसा रिवाज होता है, जब राजा किस साधु का स्वागत करता है ना तो वो कहता है महाराज बताओ कैसी सेवा करूँ आपकी, हाउ कैन आई सर्व यू, आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा था, तो फिर विश्वामित्र मुनि वर्णन कर रहे हैं कि उनको क्या चाहिए। तो बोले क्या चाहिए, आपके जो पुत्र है राम, ज्येष्ठ पुत्र राम, उसको लेने के लिए मैं आया हूं। तो बोले क्यों, क्योंकि मुझे अब मेरे यज्ञ की संपन्न करना है यज्ञ मेरा। तो उसने बताया कि ये जो सुबाहु सुबाहु और ताड़का है ये रावण के प्रतिनिधि है, रावण की ओर से मुझे यज्ञ को भंग कर रहे हैं। तो रावण का नाम सुनते ही दशरथ महाराज बेहोश होकर गिर गए वहां पर, क्योंकि इसी रावण ने उनके पिता का वध किया था। तो बचपन का समय था ना, वो भय भय था उनके मन में, जब होश में लाया गया उनको तो वो रोने लगे। उन्होंने कहा अरे रावण की बात कर रहे हैं आप, रावण के प्रतिनिधियों को मारने की बात कर रहे हैं, वो तो 12 साल का कोमल बालक है अभी, अभी धनुष उठाने का बल भी उसके हाथ में नहीं है, मैं आपके संग चलता हूं, आप मुझे लेके चलो। एक पिता का दशरथ का जो अपने पुत्र के प्रति प्रेम था उसका यहां पर हमको अनुभव होता है, नंद महाराज कृष्ण के प्रति प्रेम था। तो बार बार रो रहे थे वो, इतने बड़े वीर होने पर भी रो रहे थे, बार बार गिर रहे थे, मैं चलता हूं मैं चलता हूं, मैं तो बुजुर्ग आदमी हूं, मैं वीर हूं, और मैं आप मेरे बल को जानते नहीं है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मेरे बालकों को छोड़कर आप कुछ भी मांगो। तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि आपने तो कहा था कि आपकी इच्छा पूरी करेंगे, और अगर मुझे आपको बुलाना था तो पहले ही मैं बोल लेता कि आपको चलना है मेरे साथ में, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी जरूरत नहीं, मुझे आपके ज्येष्ठ पुत्र राम की जरूरत है, और अगर आपको अपने वाक्य को शब्द को वचन को पूरा नहीं करना है तो आपकी मर्जी, मैं जा रहा हूं। और विश्वामित्र मुनि आसन से उठकर जाने लगे, तब वशिष्ठ मुनि दशरथ के पास आए। गुरु का कर्तव्य होता है शिष्य को गलती करने से बचाए, और शिष्य की जब गलती होती है तो आगे जो दुष्परिणाम होता है उसका भयंकर, उससे बचाने के भी गुरु की कर्तव्य होता है। तो तुरंत वो समझ गए कि विश्वामित्र मुनि को आपने अपराध किया, दिया हुआ वचन पालन नहीं किया, इसका परिणाम भोगना पड़ेगा दशरथ को, उसकी जो अयोध्या राज्य है वहां पर परिणाम होगा उसका। तो तुरंत वहां भागे उसके पास और बोले दशरथ महाराज इनको नाराज मत करना आप, और आप जानते नहीं हो कि ये कौन है, ये ब्रह्म ऋषि है, इनके पास बड़े दिव्यास्त्र हैं, और प्रभु राम को कुछ सेवा में लेके जा रहे हैं तो उसको बड़ा दिव्यास्त्र भी देंगे, वो रक्षा भी करेंगे, वरदान भी देंगे, आशीर्वाद भी देंगे, और ऊपर से दिव्यास्त्र भी देंगे उसको, इसलिए आपका हित है इसके अंदर, आप डरना नहीं, निश्चिंत होकर इसकी रक्षा में प्रभु को भेज देना रामचंद्र को। तो फिर उन्होंने फिर दोबारा बुलाया मुत मुनि को और अपने पुत्र को अर्पण कर दिया। जैसे ही राम जी को अर्पण किया तुरंत लक्ष्मण सामने आ गए, बोले हम भी चलेंगे आपके साथ। दोनों ने अपनी माताओं का आज्ञा लिया, कौशल्या और सुमित्रा का, कि सुमित्रा ने कहा था कि राम का साया नहीं छोड़ना है आपको, जहां भी जाएंगे उसके सेवक के रूप में रहना है, ऐसे ऐसे किरदार है रामायण के अंदर, एक भरत है, एक शत्रुघ्न है, हाँ एक दशरथ महाराज है, कि माताएं हैं, स्वयं राम है, सीता देवी है, ऐसे एक एक चरित्र हैं रामायण के अंदर इतने प्रेरणा वाले। तो तुरंत लक्ष्मण जी चले और फिर राजपुत्र जो हैं वो जंगल में चल रहे हैं विश्वामित्र के साथ। विश्वामित्र उनको दूर लेके जाते हैं अपने आश्रम में और यज्ञ आरंभ कर देते हैं, और ये दोनों धनुष ताने हुए गश्त लगा रहे हैं। उतने में यज्ञ की पूर्ति होते होते ही आकाश से बहुत भयंकर तूफान आंधी अंधेरा सब शुरू होता है। तो फिर राम भगवान बाण चलाकर सुबाहु का वध कर देते हैं। पहले उसके पहले वो आता है, क्या नाम उसका, मारीच, हाँ मारीच के ऊपर ऐसा अस्त्र चलाते हैं भगवान राम कि वो 100 योजन 800 मील आकाश में उड़ते हुए बहुत दूर समुद्र में जाके गिरता है। ये सब कथा कहाँ हो रही है? अयोध्या के पास, मतलब यूपी के पास में हो रही है, वहाँ कोई समुद्र नहीं है। पश्चिम दिशा में बाण मारते हैं तो उसको ऐसा उड़ाते आकाश के अंदर, 800 मील आकाश में उड़ते हुए मारीच समुद्र में जाके गिरता है। मुझे अभी भी याद है, हमने वो ड्रामा किया था, उसमें दुर्भाग्य से हम रावण बने थे और हम जाते हैं और मारीच के आश्रम में मारीच को बोलते हैं, मारीच हमारी आज्ञा है कि तुम, मैं जैसे बताता हूँ वैसे आपको करना होगा। तो मारीच कहते हैं, अरे अरे आप किसकी बात कर रहे हो? राम की बात कर रहे हो? अरे र नाम से ही मुझे डर लगता है, जहाँ से र नाम का उच्चारण होता है वहीं से मेरे कांपने लगता हूँ। और तब वो राम केवल 12 साल के थे जब उसने वो बाण मुझे मारा था कि वो बाण की चोट खाकर मैं 100 मील 100 यजन 800 मील समुद्र में जाकर गिर गया था। उस राम की मुझे याद मत दिलाना आप। तो रावण कहते हैं, राजा जब विनंती करता है वही उसकी आज्ञा होती है। आपको तय करना होगा कि राजा की आज्ञा पालन करना है या राजा के हाथों मरना है। फिर मारीच सोचता है, 12 साल के, वो कहता है, तात उस समय उसकी उम्र केवल 12 साल की थी, आज वो 24 साल का हो गया है। इसलिए आप इस राम के चक्कर में मत पड़ो, सीता को लौटा दो। आपके अंतपुर में कई हजारों स्त्रियां हैं, उसमें अपना मन लगाओ। ये राम अग्नि, सीता जो अग्नि की ज्वाला है महाराज, अग्नि की ज्वाला। तो वो रावण कहता है, रावण को उपदेश करने का साहस मत करो। जो हम कहते हैं वैसा करो। कितना देखो अहंकार कैसा होता है, देखो शक्ति का और सामर्थ्य का। इतना उपदेश सुनाया उसको लेकिन दिमाग में नहीं घुसा उसके, इतना अहंकार का पूरा जमीन उसके ऊपर घेरा लगाया था, उसका पहरा उसके ऊपर, अच्छी बुद्धि के ऊपर इतना अहंकार का बड़ा दीवार लगा के रखा था, वो कभी कोई छेद नहीं पाया। ना उसकी पत्नी ने समझाया तो भी समझा नहीं, ससुर ने समझाया, मैं दानव ने भी समझा नहीं, विभीषण ने समझाया, सबने समझाया उसको, लेकिन किसी के भी दिमाग में उसको प्रकाश नहीं हुआ। तो ये मारीच जो था उस समय 12 साल के बालक राम ने उसको समुद्र में गिराया था। उसके बाद और एक तीर चलाया और सुबाहु जैसे भयंकर पर्वत समान राक्षस का वध कर दिया। लेकिन उसके सबसे पहले उन्होंने ताड़का को मारा। राम के अवतार में उन्होंने सबसे पहले स्त्री राक्षस का वध किया और कृष्ण भगवान के अवतार में भी पहले पुतना का वध किया। एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। तो ये वध करने के बाद में फिर प्रभु रामचंद्र को विश्वामित्र मुनि ने गंगा नदी में बिठाकर वो उधर चले गए जनक राजा के पास, क्योंकि इनकी इच्छा थी कि इनका विवाह भी, इनकी जो परम प्रेयसी सीता देवी भी अवतार ले चुकी है, उनका विवाह होना चाहिए। तो गंगा जी में बोट में बैठकर जा रहे थे तभी प्रभु को विश्वामित्र मुनि ने पूरा गंगा का उगम की कहानी सुनाई। दिलीप राजा, सगर राजा, अंशुमान राजा, फिर भगीरथ राजा का तपस्या का वर्णन किया पूरा। ये जो कथा आती है ना गंगा जी के उगम की, वो पूरी रामायण के अंदर विश्वामित्र के मुंह से प्रभु को सुनाई गई है। उसके बाद गंगा जी को पार करके ये पहुंचते हैं जनक राजा के दरबार में। जनक राजा के दरबार में एक धनुष था, उसका नाम था हरधनु। हरधनु का मतलब क्या होता है? हर यानी शंकर भगवान और धनु यानी धनुष। ये बड़ी लंबी कहानी है। इनके पूर्वज राजा के रोमपाद राजा को शंकर भगवान ने ये भेंट में दिया था अपना धनुष, क्योंकि तो रोमपाद राजा ने देवताओं के युद्ध में बहुत सहायता किया था। तो उस युद्ध का जब समाप्ति हुआ तो शिवजी ने प्रसन्न होकर रोमपाद महाराज को अपना धनुष भेंट दिया। वीर है ना, वो वीर को क्या भेंट देते हैं? गुलाब थोड़ी देते, गुलाब चंपा का फूल थोड़े देते हैं। वीर को तलवार देते हैं, गदा देते हैं, धनुष देते हैं। तो अपना शिव धनुष जो है शक्तिशाली वो दे दिया। तो वो पुश्तों से अयोध्या के राज दरबार में चलता आया, एक के बाद दूसरे राजा को मिला, उसके बाद में आगे राजा को। एक बड़ा लंबा चौड़ा जमीन के अंदर बड़ा किला बांध के रखा था, उसके अंदर उसको रखा था। और बड़े धष्ट पुष्ट पहलवान 300 लोग लगते थे उसको उठाने के लिए। तो जब प्रभु वहाँ पर पहुँचे लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र मुनि के आदेश से, तो विश्वामित्र मुनि ने जनक को बताया कि इन पुत्रों को धनुष दिखाओ, तो इतना बड़ा दरवाजा खोलकर 300 धष्टपुष्ट वीर उसको उठाने में लगे, और बहुत देर के बाद वो ऐसे सभा में लेके आए उसको। वो छोटी सी कहानी इसकी ऐसी है कि सीता देवी जब पैदा हुई थी तो यज्ञशाला से पैदा हुई थी, तो ब्रह्मा जी ने वहाँ पर ध्वनि में उनको आदेश दिया था कि आपकी ये पुत्री है, ये परम भगवान की परम प्रेयसी है, या आपके पुत्री के रूप में इसका स्वीकार करना और लालन पालन करके उसका बड़ा करना। धनुष जो रखा गया था, एक बार जनक महाराज ऐसे घूम रहे थे इधर उधर, और घूमते घामते इस यज्ञशाला के धनुषशाला के पास में आ गए, तो क्या देखा, छोटी सी कन्या सीता एक खिलौने की तरह इस धनुष से खेल रही थी, जिसको 300 धष्टपुष्ट पहलवान भी उठा नहीं पाते थे। ऐसे खेल खेल में बच्चा कैसे खेलता है ना गेंद के साथ में, ऐसा खेल रही थी वो। तब वो समझ गए कि मेरी पुत्री कोई साधारण पुत्री नहीं है, तभी उसने मन में एक ठान लिया था स्वयंवर मेरी बेटी के लिए, कि जो वीर इस धनुष को उठाएगा और प्रत्यंच चढ़ाएगा, मतलब दूरी लगाएगा उसकी, वही उसका हाथ प्राप्त करेगा। तो कई राजा आए, क्योंकि सीता देवी का सौंदर्य का वर्णन सभी विश्व में फैल गया था, इतना फैल गया था कि कोने कोने से राजकुमार आए, अपने आप को जो वीर समझते थे, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर आए, लेकिन वो धनुष को कुछ भी नहीं कर सके, हिलाना दूर रह गया, कुछ भी नहीं कर सके। तो बड़े बड़े योद्धा आ गए और धनुष को हिला भी नहीं सके, उठाने का बात तो दूर ही रह गया। तो बहुत इकट्ठा हो गए ना ऐसे 100, 150, 200 ऐसे वीर इकट्ठा हो गए, और सभी दुखी थे बेचारे, हाँ सीता को प्राप्त करने आए थे, सबको कोई किसी को प्राप्त नहीं हुआ। तो उनको एंड में ऐसा डिस्कशन हुआ उनका कि राजा जनक ने हमारा अपमान करने के लिए ऐसा प्रण बनाया है, क्योंकि इस धनुष को कोई नहीं उठा सकता, ये जानते हुए भी हमारा उपहास करने के लिए, हमारा मजाक करने के लिए, ताकि लोग हम पर हंसे, हमारा अपमान हो जाए, इसी उद्देश्य से ये सब प्रण रखा गया है, चलो हम सब मिलकर उसमें आक्रमण करते हैं। तो ऐसे 100, 150, 200 राजा एकत्र होकर अपनी सेना के साथ में एक साथ टूट पड़े अयोध्या के ऊपर। तो क्या बताएं आपको, एक साल तक पूरा युद्ध ही चलता रहा असंतुष्टों का राजा के साथ। तो असंतुष्ट हो गए जो सीता की प्राप्ति करने आए थे, जो नहीं प्राप्ति हुई इसलिए असंतुष्ट हो गए, ऐसे सारे राजा मिलकर एक साथ में युद्ध करने लगे। एक साल तक युद्ध होता रहा, बड़े परेशान हो गए जनक महाराज, तो उन्होंने देवताओं को बुलाया, फिर देवताओं ने सहायता किया और सभी राजकुमारों को भगा दिया। तब जनकपुरी जो है युद्ध के आतंक से बच गया। एक साल पूरा युद्ध इसलिए हो रहा है कि आने वालों को कन्या का हाथ प्राप्त नहीं हुआ। और उसके बाद प्रभु आए वहां पर, 300 योद्धाओं ने उसको खड़ा किया, तो सीता जी को खिड़की में खड़ा किया, सब लोग आसन पर बैठ गए, और जनक महाराज ने कहा कि इसको दर्शन करना है तो कर सकते हैं, और ये प्रण भी बताया कि हमने ऐसा प्रण भी बना के रखा है। फिर प्रभु ने विश्वामित्र के चरणों को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया, उन्होंने कहा जाओ पुत्र जाओ, इस धनुष को उठाओ। तो सबसे पहले भगवान ने स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान होने पर भी भगवान ने धनुष को प्रणाम किया, उसको प्रदक्षिणा किया। उसके पहले किसी भी योद्धा ने उस धनुष को प्रणाम नहीं किया था ना प्रदक्षिणा किया था, क्योंकि उनको बल पर बहुत गर्व था। लेकिन प्रभु के पास अंतरिम बल था, मतलब सुप्रीम पावर होने पर भी प्रभु नम्रता का प्रदर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो शिव जी का धनुष है, महादेव का धनुष है, इसलिए प्रणाम करते हैं, जो हमारे वंदनीय है, प्रणाम करके प्रदक्षिणा करते हैं, और फिर एक बार गुरु की ओर देखते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और फिर बाएं हाथ से, दाएं हाथ से भी नहीं, बाएं हाथ से उसको उठाते हैं। कहते हैं कई मील लंबा था वो धनुष, एक हाथ से बीच में से उठाया उसको, जैसे कोई बालक वो था ना, क्या बोलते हैं, डंडी खिलौने के होते ना वैसे उठाते ना, वैसे उन्होंने सहजता से उसको उठाया, और जैसे उसको उठाया बहुत बड़ा गर्जना हुआ आकाश में, सब देवता लोग सतर्क हो गए। फिर सबकी आंखों के सामने भगवान ने उस पर वो चढ़ाया प्रत्यंचा, जिसको कहते हैं ना दोरी धनुष की, और दोरी को चढ़ाकर जब उन्होंने उसको खींचा और जब छोड़ दिया उसको, तो ऐसी चमत्कार हो गया कि उसकी आवाज से सब लोग में जितने देवता थे, असुर थे, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक पे सब डरने लगे। क्या प्रलय काल आ गया क्या? जो समय तो नहीं प्रलय काल का, लेकिन ये ध्वनि क्या भयंकर हो रही है। और जब उन्होंने इसको खींचा और खींचा और खींचा और खींचा तो बीच में धनुष से टूट गया, और उसके बाद जो आवाज हो गई उस आवाज से पूरे ब्रह्मांड में 14 लोकों के अंदर सभी लोग बेहोश हो गए, सिवाय जनक महाराज, सिवाय सीता के, सिवाय राम के और विश्वामित्र मुनि के और लक्ष्मण के सिवा सभी लोग पूरे विश्व में, पूरे 14 लोकों के अंदर बेहोश हो गए। इतना भयंकर ध्वनि आ गया जो निकला जनकपुरी से और 14 भुवन के अंदर पार करते हुए सबको बेहोश करके लौट गया। फिर सीता देवी नीचे आई और प्रभु को उन्होंने माला अर्पण की। इस तरह से प्रभु रामचंद्र का और सीता देवी का विवाह हुआ। बोलो प्रभु रामचंद्र भगवान की, सीता राम भगवान की, हरे कृष्णा। इसके आगे की कथा आपको अगले मंगलवार को बताएं। आज प्रभु का जन्मदिन है, सब लोग प्रभु का जन्मदिन के ऊपर उपलक्ष्य में उनके नाम का जप कीजिए। प्रभु रामचंद्र जो है उनका नाम बहुत प्रभावी है, सब भय से मुक्त कराने वाला है। हमारे बचपन में हमें माँ बताती थी कहीं भी आपको डर लगेगा तो राम का नाम लो, हरि का नाम लो। तो हरण भव भय दारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। दारुण यानी बहुत भयंकर, जन्म मृत्यु का जो भय है बहुत भयंकर है, दारुण है। उस भव भय को, मतलब जन्म मृत्यु के भय को, ये राम नाम जो है वो हरण कर लेता है। और केवल भय को हरण नहीं करता है, प्रेम की दीपक को जलाता है हृदय में और जीवन को धन्य करता है। मनुष्य जीवन में प्रभु का नाम लेना बहुत ही जरूरी है, चाहे आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के हो। प्रभु का नाम लेने से, मैंने क्या बताया, प्रभु का नाम लेने से, उनकी कथा सुनने से भाग्य का उदय होता है, जन्म मृत्यु के भय से मुक्ति हो जाती है। जीव जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए तड़पते रहता है वो आनंद केवल प्रभु का नाम लेने से प्राप्त होता है। सब प्रकार का कर्म का बोझ, पाप का बोझ नष्ट हो जाता है और अनंत कोटि ब्रह्मांड में फंसा हुआ जीव, दुख भोगता हुआ जीव जो है वो मुक्त हो जाता है और प्रभु के धाम को प्राप्त करता है। इसलिए आज का दिन साधारण दिन नहीं है, हमको लगता वही है सूरज है, वही शाम है, वही काम पे जाना है, वही तो नौकरी करना है, वही ट्रेन में लटकना है, सब कुछ करना है, लेकिन आज के दिन प्रभु को याद करेंगे तो अनंत जन्मों का ये जो बंधन है वो छूट जाएगा और प्रभु के धाम के हम हकदार होंगे। यही प्रभु की अनंत कहानी है। अगली बार मैं आपको प्रभु की कृपा और प्रभु की रक्षा कितनी महत्वपूर्ण है वो बताऊंगा आपको अगली कथा में। आप आइए कि कैसे प्रभु रामचंद्र ने ऐलान किया है कि जो भी व्यक्ति मेरी को एक बार शरण आएगा उसको मैं अनंत काल तक भय से मुक्त कर दूंगा, मैं उनको पूरी तरह से रक्षा देकर अपने पास रखूंगा, अपना बना लूंगा। इसकी कहानी मैं अगली बार आपको बताऊंगा। सीताराम भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।